ओम शांति। रात के 9 बजे है और सभा में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। जानते हैं ना आप, हमारे सामने आदरणीय सूरज भाई जी ज्ञान किरणों से संपन्न यहाँ पर उपस्थित है। हम सभी जोरदार परस्पर ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भाई जी का जीवन अपने नाम के अनुरूप ही उनकी गरिमा है। जिस तरह आकाश में चमकता हुआ सूरज समस्त विश्व को अपनी रोशनी अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, बदले में कोई कामना नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार आदरणीय सूरज भाई जी ने अपना समस्त जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। सूरज भाई 14 वर्ष की किशोरा अवस्था में 1964 में जो ईश्वरीय ज्ञान आपने प्राप्त किया है, 1968 से आप मधुबन में समर्पित रूप में सेवाएं अपने दे रहे हैं। साकार बाबा की पालना का भी आपने सौभाग्य प्राप्त किया है और योग की गहराई एवं उसके ऊपर अनुसंधान विभिन्न प्रयोग इसके ऊपर आपकी विशेष रुचि रही है और वर्तमान समय मधुबन ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों ही स्थानों का भोजन बनाने का भंडारा संभालने का निमित्त है। आज हम आदरणीय सूरज भाई से सुनेंगे।
सुनेंगे ये तो बताया नहीं,
परिवर्तन की कला।
लेकिन मुझे अब तक नहीं पता मुझे क्या सुनाना। आगे आ जाओ नरोत्तम भाई, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पहले तो मुझे सभी भाई बहनों को बच्ची में देखकर बहुत आनंद होता है। क्यों होता होगा पता? हमारे यही मधुबन से 5 ग्रुप बनाए थे पुस्तक के, तो मुझे कहा पीछे के 5ों का एक क्लास आप ही करा दिया करो हफ्ते में एक बार। सभी मुख्य भाई यहाँ के बैठे थे तो मैंने सबको कहा, मधुबन में कोई प्रोग्राम नहीं चल रहे थे, पहले टीचर्स मैंने आपके लिए अकाउंट के लिए वो भी नीचे गया तो यहाँ कुछ नहीं था, तो जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ अच्छा नहीं रहता है। मैंने सबसे पूछा कि आप लोग ऐसा ही पसंद करते हो कि यहाँ प्रोग्राम चले? सबने कहा प्रोग्राम चले, तो सबने एक मत हो के अप्लाई किया कि 200-250 भाई बहनों के प्रोग्राम यहाँ सदा ही चलने चाहिए। और कुछ दिनों के बाद से यहाँ प्रोग्राम आने लगे, आप आए हैं, उससे पहले भी कई ग्रुप भर्ती करके गए हैं, लेकिन जब हम सभी यहाँ भर्ती करते हैं तो मधुबन के लिए बाबा ने जो कुछ कहा था एक बात मुझे याद रहती है, बात बहुत पुरानी होगी 40 साल से भी पहले की। तब बाबा अपने कमरे में बहुत आते थे, ये हॉल नहीं था, इस छोटे हॉल में ही अपने कमरे में आया करते थे। कभी कभी तो और जगह भी आए जिनको आप यहाँ जानते नहीं, छोटे कमरे इधर उधर बने हुए जिसमें 50 लोग बैठ जाए। बाबा ने कहा एक दिन ये मधुबन जादू की नगरी बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? जब यहाँ से व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो जादू की नगरी इस जगह को बनना है और हमें बनाना है, क्योंकि तो हमारे वाइब्रेशन से सब काम होते हैं। बाबा ने यहाँ तपस्या की, मामा ने की और दादियों ने की, किसी भी स्थान पे लगातार तपस्या होती है तो वो स्थान लाइट हाउस बन जाता है। और इस स्थान का संसार में सबसे ज्यादा महत्व होगा। आपको पता हो रशिया के वैज्ञानिक तो पहली बार यहाँ आए, जब हमारी विदेशों में सेवा हुई तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उनके पास एक मशीन हुआ करती थी जो वाइब्रेशंस को रीड कर सकती थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो बाबा की झोपड़ी है यहाँ से और जानती स्तंभ तक सड़क बना दें 10-12 फुट की, इसके संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। संसार में ऐसे कहीं नहीं है। हम समझ सकते हैं क्यों बाबा चले हैं यहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ खेलते थे वो ऐसे ही खाली मैदान सा था, शांति स्तंभ नहीं था वहाँ, तो बाबा के जाने के बाद बना था, फर्श भी नहीं था, मिट्टी होती थी, तो बाबा वहाँ खेलते थे। तो इस स्थान पर जब सभी आकर भक्ति करते हैं तो बहुत आनंद तो होता ही है न? वैसे भी यहाँ रहने का किसी को मौका नहीं मिलता था, अब आप सबको 4-5 दिन रहने का मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पहली एक चीज मैं आप सबको कहूँगा, किसी भी स्थान पर अगर वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों तो वहाँ सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सफलता का द्वार खुल जाता है। एक अनुभव सुनाऊंगा अभी का। एक भाई ने मुझे फोन किया कि मेरी दुकान नहीं चल रही, बहुत अच्छी चलती थी, पसंद क्या हो गया, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मैंने उसे पूछा योग लगता है? योग नहीं लग रहा है, परेशान हो गए हम। मैंने उसको जैसे इतना कहा अपनी दुकान में बैठ कर तुम खाली रहते हो, दोस्त वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते रहो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और मैं एक महान आत्मा हूँ। उसको मैंने दृढ़ कर दी कि तुम्हें ये करना है, इससे सब काम ठीक हो जाएगा। और कुछ ही दिन करने के बाद उसका फोन आया कि सब कुछ अच्छा हो गया है, दुकान पर ग्राहक वैसे ही आने लगे, सब कुछ अच्छा हो गया है। ये बहुत अच्छा समाचार था, ये भी जाने हफ्ते पहले ही मुझे ये मिला। तो हम सभी पहला परिवर्तन करेंगे अपने संकल्पों का, जो बहुत जरूरी है, जिसे सारा परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम जीवन परिवर्तन कहते हैं। यदि हम उसे संकल्प परिवर्तन कहें तो ये यथार्थ मीनिंग है उसका। संकल्प परिवर्तन, विचार बदल दे जीवन बदल जाएगा, विचार बदलने परिस्थितियां बदल जाएंगी, विचार बदल दे परिवार बदल जाएगा। मैं सभी को सावधान करना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं विनाश का समय समीप आता जाता है। संसार में क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा, पाप बहुत बढ़ता जा रहा है। बाबा ने सावधान कर दिया था बहुत पहले, अंत समय में पांचों विकार और पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे और किसी में किसी विकार का कोई भी अंश बाकी होगा वो उसको अटैक करेगा, हार हो जाएगी। मैं एक उदाहरण भी दूंगा, लेकिन पहले आपके समझ से सुंदर गुजी बात रखता हूँ छोटी सी, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट है इस संसार का। इस संसार में इस समय बैड एनर्जी बहुत चारों ओर फैली हुई है, बैड एनर्जी बुरे वाइब्रेशन, लेकिन गुड एनर्जी भी है। अगर हम अच्छे विचार करते हैं तो हम संपूर्ण संसार की गुड एनर्जी से जुड़ जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, वो हमारे अंदर आने लगती है तीनों लोगों की। और अगर हम व्यर्थ संस्कृत कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम जुड़ जाते हैं बैड एनर्जी से, तो सारी बैड एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है मन बुद्धि में। इसका सभी ध्यान देंगे बहुत, ये अननेसेसरी समस्याएं, बिना मतलब की समस्याएं जीवन में आ जाती हैं व्यर्थ सोचने से। हम अपने को सदा पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहेंगे, बाबा से भी जुड़े रहेंगे। वो अनुभव में सुना रहा था, कल एक युगल मेरे पास आए, हमारे इस पार्क में वो आए हुए थे, बहुत लोग थोड़े थोड़े ज्ञान वाले आए थे इसमें। तो कहा हमारे जीवन में एक समस्या आ गई है, हम दोनों ही एक मिनिस्ट्री में नौकरी करते थे, पत्नी बोल रही थी। मेरे भाई ने कहा है नौकरी वोकरी में तुम्हें क्या मिलता है, छोड़ो मेरे पास आ जाओ, मेरा धंधा बहुत बड़ा है। हमने उसकी बात मान ली और दोनों ने नौकरी छोड़ दी, उसके साथ लग गए और उसने पक्के हमें गड़बड़ में डाल दिया, धोखे में डाल दिया और हमारे पास कर्ज हो गया है 25 लाख और कुछ नहीं है, अब नौकरी भी नहीं है। मैंने पूछा कितने समय से ज्ञान में, 3 साल से। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि हमें सुख शांति से जीना सीखना चाहिए। लोभ समस्याओं में उलझा सकता है आपको, इसलिए देखो उनको 90,000 सैलरी मिल रही थी, दोनों वो थे और एक लड़की, बस 3 का परिवार, आनंद से जी रहे थे। लेकिन सोचा है 7 करोड़पति बन जाएंगे, फटाफट करोड़पति बन गए, समस्याएं समस्याएं, और भी समस्याएं आ गई उनके जीवन में, वो और भी बड़ी आ गई। तो जो भाई था उस पर उसने ही अटैक करा दिया किसी से, उसको मारने लोग आ गए, ये लोग घबरा गए, इसकी जो लड़की है बहुत परेशान, कहीं पापा को मारने वाले हैं। कितनी बुरी चीज हो गई, एक साथ सारी जीवन की सुख शांति नष्ट कर दी, 25 लाख कर्ज कैसे चुकाए उसको समझ में नहीं आ रहा है। और जो भाग्य बन सकता था पूरे 84 जन्मों का, 21 जन्मों का ही नहीं, 84 जन्मों का बिगड़ गया सब खेल। इसलिए स्वयं को सुख शांति से कैसे जीवन जीना है इस पर अच्छा चिंतन सभी करेंगे। ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, तीनों चीजों को हमें महत्व देना है, अपना जीवन, समय और संकल्प। बाबा ने मुरलियों में पीछे ही बहुत बार कह दिया, तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, वर्ष के बराबर कह दिया, और तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है। महान है और ये जीवन कितना मूल्यवान है। सोचो मैं संकल्प आपको दे रहा हूँ, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप अपने परिवार की पालना करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सबको पता है ना। माताओं को भी नौकरी करनी पड़ती है, बच्चों को भी संभालना है, भाई भी काम धंधों में लगे हुए, सारा दिन लगे हुए ना। हमें बाबा ऐसा भाग्य देने आया है कि दो युग तक तो कमाना ही नहीं पड़ेगा और तीसरा युग सहज सब कुछ मिलेगा। सब अपने से बात करें, ऐसे तीन युग का श्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आपने कभी सही नहीं किया होगा, आपके बच्चे कर रहे होंगे, अच्छी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत कोचिंग कर रहे हैं, कहीं एग्जाम दे रहे हैं, कहीं सफल हो रहे हैं, कहीं निराशा मिल रही है, मन पर इफेक्ट आ रहा है, ये सब एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी कमाई के लिए। और हम जानते हैं कमाई भी हो जाए तो सुख शांति कितनी रहती है जीवन में। सब चिंतन करें, सर्वश्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सदा भरपूर रहेंगे। मैंने अपने कमरे में एक श्री कृष्ण का चित्र रखा हुआ कहीं से मुझे मिला, वो मिलता नहीं कहीं, कोई अपना ही भाई हरियाणा में एक बनाता है उसको, तो श्री कृष्ण को डेकोरेट किया हुआ, बिजली जब ऑन करते हैं तो सारे उसके जो जेवरात है ना ज्वेलरी बॉडी की वो चमकने लगती है। आज कोई पहनाई उसमें हाथों में, यहाँ वहाँ, यहाँ पैरों में, बांसुरी में भी, मैं उसको रोज जला लेता हूँ सवेरे उठते ही। और उससे मुझे नशा चढ़ता है, क्या चढ़ता होगा, बाबा हमें कितनी धन संपदा देता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पीछे बाबा की मुरली में एक बात आई थी, आप सबने शायद सुनी हो, बात तो 45 साल पहले बाबा ने कही थी या 47 साल पहले, कि जितनी मुंबई की सारी धन संपदा है लोगों के पास, उतना तो तुम्हारे महल में एक बड़ा सा हीरा जड़ा होगा। हम तो सोचते रह गए, ये भी ठीक है बात, भगवान कह रहे तो सत्य हुआ ना, सोचने की बात ही नहीं। हम सोचता ही रहेगा, सब देखने लगे एक दूसरे को, हमें पता ही नहीं हमें क्या मिलने जा रहा है। और इस संसार का जो ये परिवर्तन होगा, इतना वंडरफुल होगा। एक विज्ञान की बात सुना दूं, आप लोगों ने ज्यादा सुनी होगी, मैं तो टीवी आदि मुश्किल से ही कभी देखता हूँ। तो मुझे बताया था कि जब वो कुछ घूम रहे थे ना ग्रह, और किसी बात हो रही थी कि कोई धरती से टकरा जाएगा, तो पास से गुजर गए थे तो बताया कि एक छोटा ग्रह हीरो का है, पूरा पूरा हीरो का। और वैज्ञानिकों का अनुमान है 2029 में, 29 में धरती पर गिर जाएगा, तो पूरी संभावना है। और जब वो गिरेगा तो धरती हीरो से भरी होगी, तो हमारा वो गीत सुना है ना, भारत फिर भरपूर बनेगा। बिल्कुल ऐसी प्लानिंग है, देखो कैसी प्रभु प्लानिंग। आप सोच के सागर उछलेगा तो सारा सागर की तले में जो धन है वो यहाँ आ जाएगा, धीरे से पानी पीछे हटेगा, धरती भरपूर हो जाएगी। वंडरफुल खेल चलेगा परिवर्तन का। मैं छत्तीसगढ़ में गया, मुझे बताया वहाँ कि जहाँ वैज्ञानिकों ने मालूम कर लिया है कि 9 किलोमीटर नीचे 2 किलोमीटर लंबी हीरो की खान है, लेकिन 9 किलोमीटर नीचे है। फॉरेन एजेंसियों से कॉन्टेक्ट किया हुआ कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, देख लो आप। मैंने कहा क्या जरूरत है खर्च करने की, प्रभु प्लानिंग कुछ और है। एक झटका लगेगा, नीचे का माल ऊपर, ऊपर के सब पापी नीचे है, क्योंकि पापी भी काम आएंगे, वो नीचे तो उनका खाद बन जाएगी, और वो किसी काम आएगी खाद भरी भूमि हम सब से। क्या प्रभु प्लानिंग, मैं तो जब ये बात सुनता हूँ पता चलता रहता है तो अपने बच्चों को संपूर्ण सुख देने के लिए क्या खेल चलेगा इस काम है, सब बाबा का ही खेल। अरे वो कह देता है मैं कुछ नहीं करता, पर प्लानिंग तो उसी की होगी ना, बिना प्लानिंग से कुछ होता है क्या? ठीक है, बहुत चीजें ऑटोमेटिक भी हैं, पर उसके पीछे भी किसी की तो प्लानिंग है। तो हम सभी विचार करें क्या कर रहे हैं हम, है सभी चिंतन करना है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर समय आपको मिलता है, अपने पुरुषार्थ को विशेष लिफ्ट देनी है, सबको चेंज लानी है, बहुत अच्छी पुरुषार्थ में चेंज। कुछ चीजें मैं आपको कहूँगा, उन पर आप ध्यान दें। ज्ञान में 10 साल से ज्यादा जो भाई बहने हैं हाथ उठाएंगे, अच्छा बहुत है। सभी अपने को एक समान में स्थित करेंगे, मैं पूर्वज हूँ, पूर्वज माना बड़े, हम पूर्वज हैं और हमारी बहुत जरूरत है संसार को। सब अपने इस महत्व को समझ लें, चाहे नए भी हैं आप, जिन्होंने जीवन में पवित्रता अपना ली है वो बहुत महान है, वो इस संसार के लिए वरदान है। उनकी उपस्थिति प्रकृति को पवित्र करती है और इस संसार को बहुत बल देती है। हम ऐसे वाइब्रेशन से संसार में फैलाएं कि बढ़ते हुए पाप का जो फोर्स है वो धीमा हो जाए। मनुष्य के मन में जो पाप बढ़ता जा रहा है निष्पाप होने लगे, सबके अंदर जो देवत्व है वो इमर्ज होने लगे, इसकी बहुत जरूरत है। आप सभी पुरुषार्थ का कुछ प्लान बताएंगे, मैं छोटी छोटी चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। मैं पूर्वज हूँ, सवेरे किसी भी टाइम 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक रोज एक बार बाबा से दृष्टि लेंगे और पूर्वज की स्मृति में रहकर चारों दिशाओं में दृष्टि देंगे। सब करेंगे ये काम। इसके बाद छत है, मुंबई में छत तो मुश्किल होती है, नहीं तो अपने घर में ही करेंगे, क्योंकि ये अभ्यास बहुत अच्छा करना है आप सबको, बहुत मजा आएगा। हम पूर्वज हैं, सबकी पालना हमें करनी है। जैसे हमारी वंशावली बहुत दुखी है, बाबा का एक महावाक्य 2 दिन से मेरे अंदर गूंज रहा है बहुत। आपको याद तो नहीं होगा, मैं याद दिलाऊंगा, क्योंकि ऐसे महावाक्य सब कैच नहीं करते मुरलियों से। जब तक तुमने सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर नहीं जा सकोगे। बाबा जरूर उसने कुछ विशेष आत्माओं को कह रहे थे, सर ये जान लें कि बाबा सब कुछ सबके लिए नहीं कहता है, न जाने किसके लिए कह रहा है वो कुछ, और जिनके लिए कह रहा है वो समझ जाते हैं कि हमें कहा जा रहा है। बहुत बहुत गहन प्रेरक महावाक्य है ये। जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर वापस नहीं जा सकोगे। तो हमें अपने को बड़े कार्यों के लिए तैयार करना है, एक प्रैक्टिस ये सभी करेंगे। बड़ा भारी महत्व है हम सबका। मैं बाबा की एक गुजे बात सुनाया करता था क्लासिक में, बाबा से सुनाई हुई है और मुझे बहुत प्रिय लगी थी। तुम हो पूर्वज, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। बहुत गहरी बात हो गई। पुण्य हम करेंगे, बल मिलेगा सारे संसार को, इसलिए तुम्हें उसका फल भी पदम गुना मिलता है। वैसे तो जो जैसा पुण्य करेगा वैसा फल मिलेगा, पर हमें मिलेगा उसका पदम गुना फल, क्योंकि उसका बल सारे संसार को पहुँचता है, सब धर्मों की आत्माओं को मिलता है। हम अपने इस महत्व को समझ लें, आप ध्यान रखेंगे तो लोग सोचते हैं कि इस सब को करने से हमें क्या होगा। इस सब को करने से जीवन की समस्याएं आपसे ही समाप्त हो जाएंगी। जिसके भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, इस श्रेष्ठ साथ में लग जाएं, समस्या आप ही चली जाएगी। जितना हम समस्याओं से कम्युनिकेट करते हैं ना, उनके कनेक्शन रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं ज्यादा, उनके बारे में परेशान रहते हैं, उतना समस्याओं को बल मिलता रहता है, हम निर्बल होते जाते हैं। जितना हम डिटैच होना सीखेंगे उनसे और श्रेष्ठ साथ में लगे रहेंगे, समस्याओं का फोर्स आते ही समाप्त होता रहेगा। दूसरा एक अभ्यास जो रोज सबको करना है, सवेरे भी कर लें, शाम को भी कर लें, दो बार भी कर सकते हैं, सोने के समय कर लें, उठने के समय कर लें, मैंने कहा 4 से 6 के बीच कर लें, शाम को 6 से 8 के बीच कर लें, सोने के समय कर लें। बाबा ने पिछले सीजन में एक बहुत सुंदर बात कही थी, आपने वो सुनी है, किसी को याद हो, तमिलनाडु के ग्रुप को खड़ा किया बाबा ने और उनको कहा कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लिया करो। ये बहुत सुंदर बात है। आप सभी कर्म क्षेत्र पर हैं, आप ये नियम कर दो, सवेरे एक बार कार्य पे जाते हैं तब, कोई विशेष कार्य दिन में करने के लिए जाना हो तब, बाबा से सफलता का वरदान लें। कैसे लेंगे? उसकी विधि ये अपनाएंगे, फिर करेंगे मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। कई लोग इन संबंधों में कंफ्यूज होते हैं। इसे 21 अगस्त पर दादी आई, बहुत लोग पूछने लगे दादी शरीर छोड़ के आई, क्या हुआ, बच्चा सो रहा था, क्या हुआ, शरीर छोड़ के आएंगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु। शरीर छोड़ के आत्मा नहीं आती। इस रहस्य को जानने के लिए मैं आपको एक सुंदर बात कहता हूँ, उसके आप ध्यान देंगे और ये जो हमारी सूक्ष्म फिलोसफी है उसको समझने में सबको बहुत देर लगती है। मैं आप सबको कहूँ कि अभी आप चल के बाबा के कमरे में बैठो, अब नहीं है, फिर करो मैं बाबा के कमरे में बैठी हूँ, बाबा सामने है, पहुँच गए ना वहाँ, अब यहाँ भी है और वहाँ भी है। किसी जगह भी आप कर लो, मुंबई में मैं अपने घर में बैठा हूँ तो वहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सूक्ष्म गति है, जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर पहुँच जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस जाती है, हमारी चेतना पहुँचती है, हमारा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ के भी नहीं गई है, पर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना वहाँ पहुँच गई। ऐसे ही होता है, हम सब यहाँ बैठे हैं, बाबा हमें सूक्ष्म वतन में दिखा सकता है, सबको दिखा सकता है नहीं, लेकिन हम यहाँ हैं। कोई कहे आप तो सूक्ष्म वतन में थे, नीचे से ऊपर आ गए थे, नीचे कैसे थे, इस गति को हम जान लें तो आत्मा शरीर छोड़ के नहीं आती, उसका प्रोजेक्शन होता है, उसका इस तरह स्वरूप काम करता रहता है, नहीं तो डेथ हो जाएगी ना, आत्मा शरीर से निकली माना मृत्यु। तो हम सभी ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, बाप दादा सामने हैं, बिल्कुल सामने देखेंगे बाप दादा को, इसको समय दे दें आप 1-2 मिनट का, बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग के बाद अब देखेंगे बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, इसको स्वीकार करेंगे बच्चे निर्विघन भव, सफलता मूर्त भव, तीनों वरदान। और बिल्कुल स्वीकार करेंगे और दिन में इसके नशे में रहेंगे कि पेड़ वरदान बाबा से मुझे हैं, तो निर्विघ्न जीवन का बहुत अच्छा अनुभव होगा, माया पर विजय का अनुभव होगा और कार्यों में सफलता का अनुभव होगा। जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, विशेष काम करने जा रहे हैं, तब एक मिनट बाबा को याद करो और फिर करो। बाबा ने हाथ फिर किया और कहा बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म से अधिकार है, जाओ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और इसका परिणाम देखना। पसंद है? हमें कुछ ऐसे ऐसे अभ्यास करते रहने हैं जो हम बाबा से जुड़े रहे सारा दिन, चाहे वो पावरफुल योग न भी हो किसी का, लेकिन हम बाबा से जुड़े रहे इसका बड़ा भारी महत्व है। पसंद है? रहने सभी कर सकते हैं। रोज बाबा से ये तीन वरदान लेने हैं, आपकी विजय होती रहेगी, माया पर विजय होगी, आपको महसूस होगा किसी भी विकार को जीतना हमारे लिए सरल हो गया है। जो विकार ऐसा महसूस हो रहा था कि इसको जीतना बहुत कठिन है, वो सरल हो गया, साधन हो गए भाई। जीत बजाओ और सभी वरदान लेंगे, बहुत अच्छी तरह ये चीजों।
Thank you.
ये हमारी ऐसी सुंदर प्रैक्टिस है जिनसे आत्मा को बहुत बल मिलता है। मुझे याद आ रही थी एक बात, योग में 31 दिसंबर इसी हॉल में बाबा ने एक बहुत अच्छी मुरली चलाई थी, परिवर्तन शक्ति, जिसमें कई को साथ में परिवर्तन करने की बातें कही थी। तब हमने उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, इसलिए मुझे वो याद है। मैं आपको उसकी कुछ बातें अब आजकल के समय अनुसार कह देता हूँ। अब अपना ऐसा स्वभाव बना ले, नेचुरल प्रैक्टिस कर ले कि जब भी पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, तो हम अभ्यास करेंगे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। फिर नहीं लगती, दो बार कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जिनको हम अपने कार्यों से जोड़ लें तो सहज भी हो जाएगा और हमारे अच्छे अनुभव भी होते जाएंगे। सवेरे उठना सहज हो जाता है महानगरों में या नहीं? मुंबई में सहज है उठना, छोटे घर होते हैं, किसी के लिए सहज होता होगा, किसी के लिए चैलेंज भी होता होगा सवेरे उठना। सब सोए हुए तो फिर नींद भी आ जाती होगी। खुली जगह में ज्यादा आनंद आता है ज्ञान योग में, यहाँ इसीलिए तो आनंद आता है ना, प्रकृति का सौंदर्य भी है और खुला खुला भी है सब कुछ। बंद जगह में, मैंने कभी पढ़ा था, बंद जगह छोटी छत विचारों को छोटा कर देती है। तो मेरे को तो छोटी छतों में, छोटी जगह में रहा ही नहीं जाता, भारी हो जाता है एकदम से। मैं निकलता हूँ छत ढूंढने लगता हूँ कि कहीं छत हो तो जरा खुली हवा में घूम के आऊं। पानी पीते हुए ये पसंद है सबको, भोजन बनाते हुए माताएं कर रही होंगी क्या, मैं परम पवित्र आत्मा, बहुत अच्छा ये अभ्यास है। सभी को ये जान लेना है परिवर्तन शक्ति हमारे पास है, हम केवल, मैं दूसरा संकल्प देता हूँ, हम केवल अपने को परिवर्तन करने की दृढ़ इच्छा करें। मनुष्य के पास अगर कमी होती है तो दृढ़ इच्छा की। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है घर में, ज्ञान में भी है, सोचता है क्रोध न करूं, पर फिर करता है, उसका क्रोध क्यों परिवर्तन नहीं होता? उसके पास उसको बदलने की दृढ़ इच्छा नहीं है। दृढ़ इच्छा, हम जान लें परिवर्तन शक्ति हमारे पास है, स्वीकार करें इस चीज को, हम जो चाहे अपने में परिवर्तन कर सकते हैं। बोलने में परिवर्तन, कर्म करने की कला में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, सोचने सभी। किसी का स्वभाव होता है बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाने का, परिवर्तन कर सकते हैं हम, एक चैलेंज के रूप में से ले सकते हैं, दूसरे की कोई बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एक अनुभव सुना देता हूँ आपको, अपना निगेटिव अनुभव है जो मैं किसी को सुनाता नहीं हूँ, पता नहीं आपके सामने क्यों मेरे मुख पर आ गया। कुछ साल पहले कुछ बड़ी समस्याएं आई मेरे पास, 8 साल हो गए होंगे। मैंने अपने पास एक दृढ़ संकल्प रख लिया था, समस्या चाहे कुछ भी हो, मेरी स्थिति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। बहुत मदद मिली मुझे, केवल संकल्प की बात है ना, कोई कुछ भी बोले, मेरी स्थिति मेरे हाथ में है। मैं चैलेंज रखता था, ये मेरे पर्सनल सब थे, कोई मेरी स्थिति को बिगाड़ के तो दिखाए, मैं बिगाड़ सकता, तो बड़ी मदद मिलती रही है संकल्प से। संकल्पों में बहुत पावर है, इसलिए हम बार बार उस चीज को याद करें। मैं बहुत क्लासेज में सुनाता हूँ, मैंने इसके अपने लिए बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, सब इसको अपने अनुभव में लाएं। और अगर हम ये भी अभ्यास प्राप्त कर लें मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो हमारे संकल्पों में और शक्तिशाली क्रिएटिव पावर आ जाती है। इसलिए एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। कई साल से मैंने अपने लिए एक सुंदर संकल्प रखा हुआ, मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। ये संकल्प मुझे कहीं चिंतित होने नहीं देता। जरा भी संकल्प आए, नहीं बहुत अच्छा होगा, और वैसा ही दिखाई देता है। तो एक बहुत अच्छा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। कई लोग चिंतित रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, हम ये न हो जाए, इसको खत्म करें। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी, रचना की शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है। अपने अंदर विश्वास पैदा कर लें, जो संकल्प हम करेंगे वही होगा। इसलिए उल्टे संकल्प हमें करने ही नहीं है, चिंता के संकल्प हमें करने ही नहीं है। परिवर्तन करेंगे हम अपने को, भोजन खाते हुए परिवर्तन करेंगे। नींद से शुरू कर लेना सवेरे से, भोजन को दृष्टि देते कम से कम 3 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर इस भोजन को बाबा को अर्पित करेंगे, तुम हमें खिलाते हो, ये सब कुछ तुम्हें अर्पित पहले। फिर प्रकृति को धन्यवाद देंगे, आपने हमें ये सुंदर भोजन प्रदान किया है, आपको बहुत बहुत थैंक्स। फिर खाएंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे इससे। ये परिवर्तन भाई, लोगों को समस्याएं आती हैं, बाहर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं खाना पड़ता है। पड़ता है या नहीं, रहने नहीं सुन रही हैं, मैं जानता हूँ पड़ता है ना। चुपचाप खा लेते हैं तो देख तो नहीं रहा, फिर बाबा से क्षमा मांग लेते हैं, बाबा आज तो खा लिया। नहीं, आप इसमें घबराए नहीं, भोजन को दृष्टि देकर, सात्विक भोजन शाकाहारी तो होना ही चाहिए, दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो आँखों से निकले हुए पवित्र वाइब्रेशंस भोजन तुरंत ग्रहण कर लेता है, और भोजन में कोई भी इम्प्योरिटी हो वो नष्ट हो जाती है। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ आपकी उस परिस्थिति को, इस तैयारियों में आपको जाना पड़ता है, और सब जगह आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे में किसका प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास परिवर्तन शक्ति है, उसे यूज करें। सभी क्रोध आता है, बाबा का बनने के बाद बहुतों ने क्रोध छोड़ दिया है, मैं जानता हूँ छोड़ दिया होगा ही। जो अपने क्रोध मुक्त जीवन से संतुष्ट हैं, हाथ उठाएं जरा, बहुत अच्छा है। बाकी सबको छोड़ना है, जो रहा सा है उसको छोड़ना है। मैं विजय रत्न हूँ, मेरे पास विजय की शक्ति है। कुछ दिन आप दे दें क्रोध को, देखो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने अपने जीवन में यहाँ मधुबन में शुरू में 5-4 क्रोध को दिए जीतने के लिए। अब ये दिव्य बातें हमें पता नहीं था कैसे उसको जीते, लेकिन क्रोध नहीं करना, फिर मन तक भी नहीं आने देना, नो रिएक्शन नो इफेक्ट, इनकी हम प्रैक्टिस करते थे अपने ढंग से। इतना ज्ञान था उन दिनों, संपूर्ण तो नहीं था, ज्ञान की सूक्ष्मता तो अव्यक्त बाबा के बाद अव्यक्त मुरलियों से प्राप्त हुई बहुत ज्यादा। तो ये बहुत अच्छी विधि है, जिसको अपने क्रोध को पूरी तरह जीतना है, 21 दिन के लिए सवेरे एक अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लिखने आप इसी क्रम से करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं श्याम स्वरूप हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। बिल्कुल ये गुड फीलिंग देंगे अपने को, मेरा चित्त शांत हो गया है, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तीन बार कर लें सवेरे इसी क्रम से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजय रत्न क्रोध मुक्त शांत स्वरूप मेरा चित्त शांत हो गया है, इसी क्रम से तीन बार या पांच बार गुड फीलिंग के साथ करेंगे। यही है गुड फीलिंग का अर्थ होता है स्वीकार कर रहे हैं हम, ये है। इसमें बस दो तीन मिनट लगेंगे सवेरे, हो सकता है एक ही मिनट लगे, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत सुंदर होगा जीवन पर, परिवर्तन हो जाएगा बहुत अच्छा। एक और चीज हम सबको परिवर्तन करनी होती है जिससे बहुत कम चर्चाएं होती हैं, बोलने का तरीका। ये लोग इस ढंग से बोलते हैं कि दूसरों पे दबाव आ जाए, प्रेशर पड़ने लगे। ये लोग इस ढंग से बोलते हैं कि दूसरे का भी क्रोध उभर जाए। ये लोग इस ढंग से बोलते हैं दूसरों को निराशा आ जाए। आप अपने बच्चों को भी, परिवार में सबको उमंग उत्साह दिलाने के बोल बोलें, अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा रहेगा। परिवारों में अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट करने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, तो परिवारों में प्यार और खुशी बहुत रहेगी। जिस चीज की परिवारों में कमी पड़ती जाती है वो है प्रेम, खुशी, अपनापन, उसके कारण शांति भी कम होती जा रही है। शुरू करेंगे सभी बोलने के तरीके को बदलना। बोल हमारे कैसे हो? वरदानी बोल, सुखदायी बोल, तो सब याद रखेंगे। हमारे बोल में भी बहुत पावर होती है। अगर हम अभ्यास करते हैं अच्छे स्वमान का, मैं एक महान आत्मा हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, तो हमारे बोल बदलने लगते हैं। महान आत्माओं को कैसे बोलना चाहिए ये समझ में आने लगता है। हमारे बोल में प्यार भी हो, सम्मान भी भरा हो, स्वमान भी भरा हो, और गुड फीलिंग भी भरी हो, दूसरों के लिए शुभ भावनाएं। ये परिवर्तन सबको करना है, नहीं तो क्या हो रहा है? बोल तो सबको भी सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, इसके कारण इफेक्ट कम होता जाता है परिवार पर। एक माता जी मुझे अपने घर ले गई और उसका पति भी था, उसने कोर्स किया था, ये माता डॉक्टर, तो कहा बहुत अच्छा परिवार, कहा मेरे पति को भी कहो ये भी जान में चले, कोर्स तो कर लिया। पति बहुत तेज था, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, भाई साहब जब ये ज्ञान में चलने लगेगी मैं आप ही चलने लगूंगा। वो देखने लगी कि मैं चल तो रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ समझ गए ना। हाँ, कहा ज्ञान में चल नहीं रही है, सुनाती ज्ञान बहुत है। उसको माता जी को नफा बहुत था, जहाँ जाए ज्ञान सुनाए, पर घर में आप ही लड़ाई शुरू कर दे तो इससे प्रभाव नहीं होता ना। हमारा जीवन कम से कम ऐसा तो हो कि ज्ञान में आए हैं, कुछ तो परिवर्तन दिखाई दे दूसरों को, और वो बोल और क्रोध, ये दो चीजें ऐसी हैं, अफेक्ट है ना। क्रोध किसी का शांत हो जाता है, पूरे परिवार पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। बोल किसके सुंदर हो जाएं तो सब लोग आकर्षित होने लगते हैं। तो जैसे पहले हम बोलते थे वैसे अब नहीं। सुखदाई बोल, वरदानी बोल, आने वाले समय में दृष्टि से बहुत सेवा होने वाली है। इसलिए जिनको आने वाले समय में संसार के लिए बड़े काम करने की इच्छा हो, है आपको, मैं ये संकल्प सबको दिया करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका पूरा आभास है आने वाले समय में हम संसार के काम आ जाएं। बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, मुझे तो लोग अपनी समस्याओं के फोन करते हैं ना बहुत। अब कहेंगे लोग फोन तो तभी करेंगे जब समस्याएं होंगी, अच्छा क्यों फोन करेगा। समस्याएं आजकल मानसिक बहुत बढ़ती जा रही हैं। कल इस पार्क में मेरे पास एक युगल अपने एक ऐसे बच्चे को लेकर आए जो लंबा चौड़ा, देखने में सुंदर, बिल्कुल कोई कमी आपको उसमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन ब्रेन है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जीरो। जीरो ब्रेन भी होता है क्या? अगर उसको कहा जा रहा है खाना खा लो, वो सुन रहा है, ये कहा जा रहा है खाना खा लो, लेकिन उसे पता नहीं क्या करूं। पानी पी लो, उसे पता नहीं क्या करूं। ऐसी स्थिति माँ बाप को, एक ही लड़का, उसे उनको इसको संभालना पड़ रहा है, और वो ये भी सोच रहे हम बूढ़े हो गए, हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा, ये तो मनुष्य सोचता ही है। दूसरा केस लिया एक लड़की 22 साल की, आधा ब्रेन है ही नहीं, तो आधा बॉडी बिल्कुल डल है। उठा के लाए मेरे पास उसको, उसकी भी एक माँ और एक वो। तीसरे बच्चे को भी है जो 4 साल का है, बताया कि इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, बढ़ ही नहीं रहा उसे। हमें जब ये 6 मास का हो गया तब पता चला इसका कुछ बढ़ नहीं रहा है, ना रोता है ना हंसता है। नहीं तो एक्सप्रेशन होते ना बच्चे में, कोई रोएगा, दूध चाहिए, कुछ तो करेगा ना वो, कुछ नहीं है। 4 साल का होगा वैसा ही है। ये सब क्यों हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी के पाप कर्म इसी तरह चुप्त होंगे। तो मैं तो अब खुलेआम कह रहा हूँ कि अगले 5 साल इस संसार के लिए मेंटल हॉस्पिटल बनाने वाले होंगे संसार को। बहुत बुरा हाल हो रहा है, दो विकार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, काम और क्रोध। लोग तो बढ़ा ही हुआ पहले ही। हमें अपने को इन सब से ऊपर उठाकर बहुत शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। मैं ये बात कहता हूँ, आपने सुना होगा, मुझे लगता है अगले 5 साल में इस संसार की आधी पॉपुलेशन सो नहीं पाएगी रात को। गोलियां अच्छी होंगी नहीं जो उन्हें खिलाया जाए, गोलियां भी नहीं असर ही नहीं करेंगी। अभी भी हो रहा है, हमारे पास एक युवक सेवा में आया, समर्पित होने आया जानसर रोड में। हमें किचन में एक भाई की जरूरत थी, वो आया था, उसको कहा कि चलो देखो, चेहरा उसका सूखा हुआ उदास। मैंने पूछा क्या हुआ, कहानी नहीं आती मुझे तो। युवक अभी 25 साल का होगा, कुमार। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहा पहले एक गोली खाता था, फिर दो, फिर 4, अब 8 खाता हूँ। क्या करती हैं ये 8 गोलियां नींद की? ब्रेन को डैमेज, औरंगों को भी डैमेज करेंगी। फिर मैंने उसको विधि बताई छोटी सी, ये कम करो, 8, 7, 6, 5, 4, 8 दिन में एक पर आ जाओ, और एक छोटी सी विधि अपना उसने शुरू किया। पता नहीं मुझे मिला नहीं, चला गया, क्या है, ठीक होने लगा था। तो हमें क्या करना होगा? हम हैं पूर्वज, हमारी वंशावली सो न रही हो तो हमारा क्या हाल होगा? हमें भी जगना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। माँ का एक बच्चा सो न रहा हो, माँ सोएगी? तो हमें सबको सुला कर फिर सोना पड़ेगा। है ताकत सुलाने राजेश भाई? ये ताकत रखनी पड़ेगी। ऐसे वाइब्रेशन हम क्रिएट करें रात को, पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैलाएं और संकल्प करें सभी आराम से सो जाओ और सबको नींद आने लगे। ये होने वाला है, लेकिन इसके लिए बहुत पावरफुल योग चाहिए। बहुत पावरफुल योग, जिनका योग ही नहीं लगता उनको तो नींद भी नहीं आएगी। जो अच्छे योगी होंगे वो ये काम करेंगे। एक लास्ट बात अब आपके सामने और रख देता हूँ, हम सभी को रोज 5-7-10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारी 5000 साल पालना की है। अब प्रकृति खाली हो गई है, उसकी इनर पावर स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस उसे भरपूर करते हैं। और अगर हम प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे तो विनाश काल में प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी, भोजन भी मिलेगा, पानी मिलेगा, दवाई भी मिल जाएंगी, और साथ में विनाश नहीं करेगी हमारा। और अगर कहीं हम फंस गए तो तुरंत देख हो देंगे, ये प्रकृति हमें मदद करेगी, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, लोग उसके नीचे दब गए, तो मरते तो नहीं गए, किसी का हाथ कट गया, सिर फट गया, पैर टूट गया, पड़े हैं अंदर। अब कल्पना करो 3 दिन पड़े हैं वो, 3 दिन मृत्यु का इंतजार कर रहा हो कोई अंधेरी कोठरी में, जहाँ न पानी मिलता हो, न कोई पूछने वाला हो, उसे प्यास लगी होगी, क्या हाल होगा 3 दिन। ऐसे में हमारे सुंदर वाइब्रेशन आत्माओं को देह से मुक्त करेंगे। ये बहुत बड़े काम हमें करने हैं 5 साल के बाद। इसलिए सभी प्रकृति को भी कुछ समय दिया करें। अगर प्रकृति कह दे तुम्हारी हवा 1 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, 5000 साल तो तुम्हें हवा दी है, अब 1 मिनट में क्या होता है, बंद कर देती हूँ 1 मिनट, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, संसार का खाली हो जाएगा, सब पड़े हुए होंगे। इतना उपकार है प्रकृति का हम पर, प्रकृति को वाइब्रेशन देंगे, तरीका अपनाएंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, आकाश में हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और बाबा की पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं, मुझे चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति के सभी तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। इस संकल्प को रिपीट भी कर सकते हैं 10 मिनट, कोई भी टाइम, कोई भी टाइम कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, 6 बजे, 5 बजे, सवेरे, बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, आकाश में हूँ, और बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो प्रकृति हमें बहुत मदद करेगी, बहुत मदद, हमारे देह भी मजबूत रखेगी, इनमें रोग भी नहीं आने देगी, क्योंकि तमो प्रधानता के कारण रोग है ना। अब देखो, कल हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक सुना रहा था, आज सवेरे उसने सुनाया, तीस साल में विज्ञान अध्यात्म को स्वीकार करने लगा है। 30 साल पहले वैज्ञानिक अध्यात्म को बिल्कुल रिजेक्ट करते थे, ये कुछ नहीं है, और अब उन्हें महसूस हो गया कि अध्यात्म के बिना विज्ञान कुछ नहीं रहेगा। 30 साल लगे, बिल्कुल संक आ गए, और अब मेडिकल साइंस ये जान गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कितने केस हो रहे हैं, मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर रही है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में हमारी स्पिरिचुअल साइंस ये ज्ञान योग की शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। मेरे पास इसके बहुत अच्छे अनुभव हो गए बीमारियों में भी लोगों की, तो सभी अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने विचारों में परिवर्तन, और कुछ कार्यों में रोज अच्छी अच्छी प्रैक्टिस जो मैंने 5-6 आपको बताई, इसका अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। अब हम प्रकृति को वाइब्रेशन देने का अभ्यास करेंगे, क्यों नहीं बजाना, चलें सभी महसूस करें, स्वीकार करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें, सफेद किरणें फैल रही हैं, मस्तक से भी आंखों से भी अंग अंग से मैं संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। आकाश में हूँ, परम धाम से शिव बाबा की सफेद पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। पवित्रता का ये सुखद फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। अब ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति के पांचों तत्व में ग्रहण कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी। आज दूसरा दिन है, दूसरी कार्यक्रम का दूसरा दिन है। सबको आपके इंतजार थी तो आज वो घड़ियां पूरी हुई, परंतु पालना की घड़ी अभी शुरू हुई है, इसलिए कल भी शाम को रात का क्लास और परसों दिन का 12:45 5 तारीख को कल रात को और परसों 5 तारीख को 12:45 कल का अनुभूति रहेगा। बेफिक्र बात करती स्थिति अमृत वेले से ही स्थिति निश्चित होंगे। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ और कल का फिर योग यहाँ अमृत वेले का करेंगे 4 से 5 फिर मुरली क्लास के लिए हम शांति भवन में पहुँचेंगे। आगे के दिन के लिए वहाँ बताए जाएगा।